ओम शांति। मीठे बाबा ने आज हम सभी को दो अभ्यास विशेष सुनाए और उन्हीं दो अभ्यास के आधार से तीन वरदान दिए। वर्तमान समय तीन दिन से अपने पीस पार्क में भट्टी चल रही है। आबू निवासी करीब 30 भाई बहने तीन दिन से भट्टी कर रहे हैं। उसमें केवल एक क्लास होता है और बाकी समय पूरी तपस्या होती है। तो आज जब बाबा की मुरली पर रूह रियान हो रही थी, बाबा ने आज हम सबको निराकारी स्वरूप और साकारी स्वरूप की दृढ़ सिखलाई। निराकारी रूप में अकाल मूर्त स्थिति, जितना हम अकाल मूर्त स्थिति में रहते हैं उतना एवर हेल्दी बनते जाते हैं। बहुत सहज कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने की विधि बाबा ने आज सुनाई। कितना भी सूली जैसा कर्म भोग हो, लेकिन अकाल तख्त पर रहने वाली आत्माएं उसे बहुत सहज रीति से पार कर लेती हैं। हम सब ने देखा है अपनी दादियों को, शरीर के कितने भी कड़े हिसाब किताब आए, लेकिन कभी भी उनके मुख से ये शब्द नहीं निकला कि मैं बीमार हूं, मुझे तकलीफ है, मुझे दर्द है। मैं सुना रहा था कि जब दादी जी का बॉम्बे हॉस्पिटल से यहां आना हुआ, तो मैं दादी प्रकाशमणि की बात कर रहा हूं, दादी जी के सामने मैं गया, बिस्तर पर ही थी और दादी जी को मैंने कहा, दादी अभी आपको अपनी तबीयत का समाचार याद पत्र लिखाना है, क्योंकि आपको सब बहुत याद करते हैं। आपने देखा होगा दादी उस समय बहुत कम बोलती थी, बोलती नहीं थी, लेकिन मेरी वो ऐसी रूह रिहान थी जो दादी जी से मैंने आग्रह किया, जिद की कि दादी आज तो आपको लिखाना ही पड़ेगा। पहले कहने लगी, नहीं आप बहुत अच्छा लिखते हो, मेरी तरफ से सबको लिख दो, मेरी याद लिख दो। तो मैं कॉपी पेन साथ में लेकर के गया था, मैंने कहा आप लिखाएंगी तो मैं लिखूंगा, नहीं तो नहीं लिखूंगा। तो दादी जी पहले तो बोलने लगी, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं लिखाऊंगी। गुलजार दादी उतने समय में आ गई वहां पर, तो दोनों दादियों के बीच में मैं था। हमने कहा दादी आज तो दादी को अपनी तबीयत का अपना समाचार लिखाना पड़ेगा। तो गुलजार दादी ने कहा, हाँ दादी लिखाओ ना, अच्छा रहेगा। तो दादी चुप हो गई, फिर बोलती, अच्छा लिखो। और पहली लाइन में लिखने बोलने लगी कि लिख दो, दादी जी 100% ओके है और आप सबको बड़ी बड़ी भाकी पहन रही है। तो मैंने कहा दादी ये तो मैं लिखूंगा कि दादी बहुत प्यार से आप सबको भाकी पहन रही है, प्यार कर रही है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि 100% ओके है, मैं ये नहीं लिखूंगा। कहती क्यों नहीं लिखेगा, मैं बीमार हूं क्या? मैं दादी, एक नली यहां लगी है, एक नली यहां लगी है, और कितने प्रकार की शरीर की बीमारी दिखाई दे रही है, और आप कह रही हैं मैं 100% ओके हूं। तो कहती मुट्ठा तुमको पता नहीं, ये डॉक्टरों का हिसाब किताब है। दादी को कुछ भी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो आराम से बाबा की गोदी में बैठी हूं, और सबको लिखो मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो 19-20 कुछ थोड़ा बहुत है, 19-20 थोड़ा बहुत है। तो वो शब्द मुझे बार बार कानों में गूंजते हैं कि कितना भी करा हिसाब किताब, कोई भी कर्म भोग, हमारी इन आत्माओं ने, हमारे आगे जो सैंपल रहे हैं उन्होंने प्रैक्टिकल बहुत लाइट स्थिति में रह करके अपने शरीर को बहुत हल्के रूप से, बीमारियों को हल्के रूप से पार कर लिया, कभी भी भोगना के रूप में बीमारी का अनुभव नहीं किया। आज भी बाबा ने बहुत अच्छी बात हम सबके आगे सामने रखी कि आप बच्चे एवर हेल्दी हो संगम युग पर, अगर कोई कर्म भोग है भी तो जो निरोगी काया बनने वाली है आपको, भविष्य में जो शरीर मिलने वाला है, उसको स्मृति में रख करके इस भोगना को सहज पार कर लो। सबसे बड़ी बीमारी है माया की बीमारी। अगर माया की बीमारी से आत्मा मुक्त है तो वो एवर हेल्दी कहला सकती है। ध्यान रखना कि माया की बीमारी किस किस रूप में अटैक करती है। तो इस पर रूह रिहान हो रही थी, आज हैदराबाद में भट्टी चल रही थी, वहां से फोन आया कि हमारे पास तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप के 200-250 भाई बहने यहाँ हैं, आप आधा घंटा क्लास करो। फोन पर क्लास करो। तो जब मैं फोन पर क्लास कराना शुरू किया तो मैंने कहा कि माया के अटैक कैसे होते हैं, और माया के बीमारियां जब एक आती है तो उसके साथ उसकी साथी सहयोगी दूसरी भी जरूर आती है। मान लो किसी आत्मा का किसी से सूक्ष्म में भी लगाव हो गया तो उसके साथ झुकाव जरूर हो जाएगा। अगर किसी का जिद का एक संस्कार है तो जिद करने वाला सिद्ध जरूर करेगा, एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है। अगर ईर्ष्या का संस्कार है तो ईर्ष्या के साथ द्वेष भावना जरूर होगी। अगर अभिमान का संस्कार है तो अभिमान के साथ अपमान जुड़ा हुआ है, या अपमान कर देगा या अपमान फील कर लेगा। ऐसे ही बहुत सारी बातें निकलती गई। आलस्य है तो उसके साथ थलबेलापन है, उदासी है तो उसके साथ निराशा जुड़ी हुई है। बाबा ने हम सबको इन सूक्ष्म बीमारियों से मुक्त होने की शिक्षाएं दी हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने आप को इस रूप से देखे, शरीर का हिसाब किताब अपनी तरफ है, लेकिन वो भी मुझे परेशान न करे, दुखी न करे। लेकिन माया की कोई सूक्ष्म बीमारी अंदर अगर रही हुई है तो वो बीमारी किसी न किसी दिन मार देगी। इसलिए उन सूक्ष्म बीमारियों को चेक करके और उनको समाप्त करना, कहीं पर भी सूक्ष्म में भी अगर ईर्ष्या की बीमारी है, किसी से भेंट करते हैं किसी को सुखी देख करके अंदर से कुछ दुख की फीलिंग आती है, किसी को आगे बढ़ता हुआ देखने में अंदर से परेशानी का अनुभव होता है, या उसको आगे न जाए इसके लिए हम कुछ न कुछ प्रयत्न सोचते हैं, उसकी ग्लानी करते हैं, तो क्या ऐसी आत्माएं खुद खुश नसीब का अनुभव कर सकती हैं? क्योंकि एवर हेल्दी एवर हैप्पी एवर वेल्दी, ये तीन वरदान जो बाबा ने हम सबको दिए हैं, हेल्थ और वेल्थ, आज बाबा ने उसको बड़े अच्छे शब्दों में वर्णन किया, जो बहुत सूक्ष्म शक्तियां हैं, अप्राप्त नहीं कोई शक्ति, अप्राप्त नहीं कोई गुण मुझ ब्राह्मण आत्मा के जीवन में, और अगर ऐसी प्राप्ति संपन्न स्थिति है तो वो एवर हैप्पी रह सकता है, सदा खुश रह सकता है। नहीं तो जरा भी कोई अप्राप्ति है तो अप्राप्ति असंतुष्टता का अनुभव कराती है। प्राप्ति संपन्न आत्माएं सदा संतुष्ट और खुशनुमा रह सकती हैं। तो हरेक अपने आप से पूछे, संगम युग पर बाबा ने हम सबको कितनी प्राप्तियां कराई हैं? क्या मेरे दिल का ये गीत है, पाना था सो पा लिया, या अभी तक भी कई प्रकार की इच्छाएं मृग तृष्णा के समान अपनी ओर आकर्षित करती हैं? किसी भी प्रकार का अगर आकर्षण है तो वो अपनी तरफ खींच करके ले जाएगा, किसी देहधारी के प्यार का भी आकर्षण है तो भी वो अपनी तरफ आत्मा को खींच लेगा। इसलिए हम सब अपने आप को इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज में अनुभव करते हैं। बाबा ने हमारी सब कामनाएं सूक्ष्म स्थूल में सब प्रकार से पूरी की है। अगर हम सब अपने आप को देखते हैं, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कभी अपने आप से ही मैं बात करता हूं कि बाबा ने हम सबको इतना भरपूर किया है, इतना संपन्न किया है, जो कभी कोई चीज में, कोई वस्तु में, कोई व्यक्ति में आंख नहीं जाती। चाहे वो कितना विद्वान हो, कितना गुणवान हो, कितना धनवान हो, कितना रूपवान हो, लेकिन बाबा ने हम सबको इतना तृप्त किया, इतना भरपूर किया, सूक्ष्म और स्थूल में भी कोई अप्राप्ति इस जीवन में अनुभव नहीं हुई ना होती है। अगर कोई संकल्प में भी उठ जाए बात तो बाबा उसी समय पूरी कर देता है, हाजिर हो जाती है। तो ऐसी संगम युग की भाग्यवान जीवन जिसमें भगवान की डायरेक्ट पालना मिल रही है, शिक्षक रूप से पढ़ाई मिल रही है, दूसरे वरदान में दूसरे स्थिति के लिए बाबा ने त्रिकालदर्शी स्वरूप में त्रिकालदर्शी मूरत होकर के रहो। हम त्रिकालदर्शी स्वरूप में जब स्थित होते हैं, कर्मयोगी स्थिति में हम अपने सामने बाबा को देखें, बाबा हमारे वर्तमान पुरुषार्थी स्वरूप को नहीं देखता है। भले कैसी भी हमारी वर्तमान स्थिति हो, कोई शारीरिक मानसिक कोई पुराना हिसाब किताब, मुझे किसी भी प्रकार से युद्ध की स्थिति का अनुभव करा रहा हो, लेकिन बाबा हम बच्चों को त्रिकालदर्शी स्वरूप से देख करके शिक्षाएं देता है, महिमा करता है, प्यार करता है, क्योंकि बाबा हमें जानता है कि इसे ही मैंने ऐसा बनाया था और यही बनने वाला है। उस त्रिकालदर्शी मूरत में उस स्वरूप में स्थित होने के कारण बाबा के दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं आता। कोई कुछ भी कर रहा हो वर्तमान स्थिति में, हम सब आत्माएं उसके एक रूप को वर्तमान को देखती हैं, और वर्तमान को देखने के कारण कभी कभी कई प्रकार के प्रश्न उठ जाते हैं, उलझन में उलझ जाते हैं, ऐसा क्यों करता है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा हो गया। लेकिन कुछ पास्ट पर भी हम अगर नजर डालें, कुछ ऐसे उसके कर्म हैं, उसके कुछ हिसाब किताब हैं, जिस हिसाब किताब के कारण वो आत्मा उसके अधीन पराधीन बनती है, केवल वर्तमान समय के अनुसार नहीं। हम अपने पास्ट को देखें, बाबा हम सबको जो त्रिकालदर्शी स्वरूप में स्थित करता है, वो हमारे भविष्य को देखता है कि इसे ही मैंने सर्व गुणों से संपन्न, 16 कलाओं से संपन्न, संपूर्ण पवित्र पावन स्वच्छ देवता बनाया था। और वर्तमान के साथ फिर पास्ट पर नजर डालता है कि इसी आत्मा से तो कितनी आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। वो हमारे गिरती कला को नहीं देखता है, लेकिन हमारे पूज्य स्वरूप को देख करके कितनी आत्माओं की मनोकामनाएं इसकी मूर्तियों से पूरी हो रही हैं, जड़ यादगारों के आगे कितनी लंबी लाइन है। मैं समझता हूं बाबा हमारे उस पास्ट के पूज्य स्वरूप को देख करके हमसे बात करता है, गिरती कला के स्वरूप को नहीं देखता है। तो ये त्रिकालदर्शी स्थिति भविष्य में बनने वाला क्या है और पास्ट में इसका पूजन किस रूप में हो रहा है, उस रूप से देख करके हम सब से दृष्टि भी देता है, शक्ति भी देता है और विशेषताओं का वर्णन भी करता है। तो आज बाबा ने हम सबको इस स्वरूप में स्थित रहकर के प्रैक्टिकल कर्मयोगी स्टेज पर आओ, कर्म करो, तो ये कर्म कभी भी आपको दुख की अनुभूति नहीं कराएंगे। एवर हेल्दी आत्मा रहेगी, एवर वेल्दी रहेगी, क्योंकि ज्ञान से संपन्न है। इस समय जो बाप ज्ञानदाता ने हम सबको ज्ञान दिया है, हम सब बच्चों को उस ज्ञान का स्वरूप देखता है बाबा, ज्ञान स्वरूप बच्चे हैं। कल की मुरली में था, सिर्फ मुझे ज्ञानी तू आत्मा पसंद नहीं है, भले कहा है ज्ञानी तू आत्मा मुझे पसंद है, लेकिन जो आत्माएं ज्ञान के साथ साथ योगी तू आत्माएं हैं, जिनका बाबा से अटूट प्यार है, जो हर पल बाबा 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 ही अंदर से याद करती हैं, उनसे बाबा का विशेष प्यार है। और आज उसको और अंडरलाइन किया, स्नेही और सहयोगी तो मर्यादा के अनुसार बनाने पड़ते हैं, लेकिन यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, ऐसी परिस्थिति आ गई, उस परिस्थिति में आपको क्या याद आता है, कोई व्यक्ति याद आता है या बाबा याद आता है? और अगर किसी व्यक्ति की याद आ गई बाबा की बजाय, तो बाबा किनारा कर लेता है। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छे शब्दों में अपनी ऑफर दी कि मैं संगम युग पर तुम बच्चों की सब जवाबदारियों का बोझ लेने के लिए आया हूं, मैं ऑफर कर रहा हूं, मुझे दे दो। और बड़े रमणीक शब्दों में बात रिपीट की कि अगर कोई ऑफर करे कोई चीज भी और आप उसको न लें, तो ये सभ्यता नहीं मानी जाती है, ये उसकी इज्जत नहीं है। स्वयं भगवान ऑफर कर रहा है और फिर भी आप बच्चे कुछ न कुछ टेंशन लेकर के, अपने ऊपर बोझ लेकर के घूम रहे हो। इसलिए कोई भी प्रकार का टेंशन है, कोई भी प्रकार की चिंता है, कुछ भी नीचे ऊपर हो रहा है, क्या हम बाबा को अपने सब बोझ दे करके लाइट रहते हैं? बाबा से डबल लाइट रहने का वरदान लिया है, और संगम युग पर हम सबको ये बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। कुछ भी है, कैसे भी हैं, बाबा बैठा है, क्या निकलता मुख से, बाबा बैठा है। दादियों के आगे पास जाओ, कोई भी बात लेकर के जाओ, बाबा बैठा है, सब ठीक हो जाएगा। कभी उनके मुख से इसके सिवाय और दूसरे शब्द निकलते ही नहीं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसी भी बात के प्रश्नों की डिटेल में नहीं जाते। दादी को देखता हूँ मैं, जानकी दादी को, बहुत सारी बातें पत्रों में आती हैं, मुझे पढ़ना पड़ता है, पढ़ करके मैं दादी के पास जाता हूँ, दादी इसका क्या उत्तर दें। इतना ज्ञान युक्त जवाब, कोई भी बात की चर्चा नहीं करनी है जो उसने लिखा है, अच्छी बातों से, ज्ञान से, समझ से, बाबा क्या चाहता है, बाबा किस रूप में देखता है, ऐसी पॉजिटिव बात लिख करके उस आत्मा को संतुष्ट करो। कभी भी उसके विषय में सोचेगी नहीं, ऐसा क्यों करता, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इतनी शुभ भावनाएं, सब ठीक हो जाएगा। और कहती, अगर मैंने शुभ भावनाएं नहीं रखी तो ये कमी मेरी हो गई, और उस भावना की शक्ति से आज इतने बड़े विश्व को कैसे पालना दे रही हैं, इतनी उम्र में भी कितना भाग रही है, दौड़ रही हैं, कितनी सेवाएं कर रही हैं। अभी लंदन में कभी सुनता हूँ, अभी जीआरसी में है, कभी ग्लोबल हाउस में है, कभी कहीं पर रही, एक दिन भी एक स्थान पर स्थिर नहीं है। कौन सी शक्ति है, कौन सी एनर्जी है, सिर्फ यही कहती है कि मैं अपनी एनर्जी को व्यर्थ नहीं करती हूँ। बाबा ने बहुत सारी शक्तियां दी हैं, उन शक्तियों को प्रयोग करो, एनर्जी को व्यर्थ नहीं जाने दो। और जब हमारे मन में कभी भी कोई व्यर्थ की क्यों लगती है, किसी के प्रति भी, अपने प्रति भी अगर व्यर्थ चलने लग गया तो हमारी बहुत सी शक्तियां नष्ट हो जाती है, बहुत सी एनर्जी व्यर्थ जाती है। इसलिए सूक्ष्म शक्तियों को जैसे हम जमा कर रहे हैं, बहुत से प्रयत्न करके, अमृत वेले योग करते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, श्रेष्ठ संघ में रहते हैं, अच्छा ब्रह्मा भोजन करते हैं, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, ये सब साधन अपनाए हैं हम सब ने अपनी सूक्ष्म एनर्जी को, शक्तियों को जमा करने के लिए। और मम्मा हमेशा एक बात कहती थी कि जमा करने में तो इतना समय देते हो, लेकिन जब गंवाते हो तो कितना समय देते हो। एक मिनट का गुस्सा, एक मिनट का टेंशन, इतने समय की कमाई को गंवा देता है। एक अपशब्द कितने समय के रिकॉर्ड को खराब कर देता है। एक सेकंड का जोश इतने समय की हुई हर प्रकार की सेवा पर लाइन लगा देता है। इसलिए आवश्यक है वर्तमान समय की चेकिंग के अंदर कि किसी भी प्रकार की मानसिक और शारीरिक रूप में उत्तेजना ना आए। उत्तेजनाएं बहुत शक्ति को नष्ट करती हैं। अगर मन में भी उत्तेजित हो गए अंदर ही अंदर, तो मानसिक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। और शरीर में भी अगर कोई प्रकार की उत्तेजना आ गई कर्म इंद्रियों में, तो भी बहुत सी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। इसलिए कुछ भी है, बाबा ने हम सबको एक बहुत अच्छा टाइटल दिया है, तुम मेरे बच्चे शीतल काया वाले योगी हो। ये काया तो शीतल है ही, लेकिन मन की स्थिति भी एकदम सरल और शीतल बन जाए, उसके अंदर भी उत्तेजनाएं ना आए, सब ठीक है। जब कहता है बाबा कि ड्रामा के अंदर हर सीन में कल्याण है, सब अच्छा ही हो रहा है, पास्ट में भी अच्छा हुआ, वर्तमान भी अच्छा है, और होने वाला भी अच्छे से अच्छा है। इसलिए जहाँ अच्छाई है और अच्छाई पर जिसका ध्यान है, छोटी मोटी कोई बातें हो गई उसमें अपनी स्थिति को हम क्यों नीचे ऊपर करें, क्यों उसका चिंतन करके अपने समय और शक्ति को नष्ट करें। अब समय है, बाबा कहता बच्चे बहुत तनाव बढ़ रहा है, बहुत दुख बढ़ रहा है, बहुत भय बढ़ रहा है, चारों तरफ से अंदर अंदर घुटन के रूप में टेंशन बढ़ रहा है। आप बच्चों को मैंने इसलिए तैयार किया है कि आप उस स्थिति में रहो जो आप अपनी श्रेष्ठ स्थिति की मनसा द्वारा उन आत्माओं को शक्तियों का दान दे सको। अगर तुम ही उलझे हुए हो तो उनको कब शक्तियां दोगे। जब मैं कल एक घंटा पीस पार्क में योग किया, क्या बताऊं मैं आपको, ऐसे लग रहा था जैसे एकदम बिल्कुल सब उड़ गए हैं, कोई है ही नहीं। संकल्पों की गति को भी देख रहा था, टिक टिक भी नहीं जैसे हो रहे, ऐसा शांत हो गए, दृष्टि की लेन देन भी बंद हो गई। सन्नाटा तो था ही, इतना सुंदर प्रकृति का वातावरण था। क्या ऐसा अभ्यास उसके लिए समय हम देते हैं जिसमें बिल्कुल हलचल बंद हो जाए, तन भी स्थिर है, भावनाएं भी बहुत शांत हैं, स्थिर हैं, और संकल्पों की गति भी बहुत धैर्यवत है। अनुभव के ही संकल्प हैं, शून्य नहीं है, जड़ता नहीं है, लेकिन अनुभव के संकल्प हैं। बस आत्मा उस निराकारी स्थिति में, उस परम धाम की स्थिति में खो जाए, बाबा के सिवाय और कोई संकल्प नहीं। अब जरूरत है ऐसी तपस्या की, और जब तक हमने ऐसी तपस्या नहीं की है तब तक हमारे संस्कार भी बदलते नहीं और हमारी तपस्या के वाइब्रेशन भी वायुमंडल को चेंज नहीं कर पाते। विघ्नों का एक बहुत बड़ा कारण हमारा ध्यान इस सब्जेक्ट पर कम है, तपस्या की सब्जेक्ट पर कम है और सेवाओं में अधिक है। तपस्या के बीच में भी कहीं पर भी व्यक्त और व्यर्थ न हो, कोई भी वार्तालाप अगर व्यक्त और व्यर्थ है किसी भी सेवा स्थान पर, किसी भी स्थान पर, तो वहां बहुत प्रकार के अटैक होते हैं, क्योंकि इस वायुमंडल के अंदर बहुत सी आत्माएं इच्छाएं लेकर के भटक रही हैं, और जहां उनकी पूर्ति होती वहां पर वो प्रवेश करती हैं। इसलिए वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना, बाबा ने एक मुरली चलाई थी कि जिस स्थान पर आप रहते हो उसको एक किला बनाओ, जैसे किले के अंदर बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बना देते हैं, कहीं से भी दुश्मन उस पर छलांग लगा करके आ न सके, किसी तरह से अटैक न कर सके, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं। और आजकल के जमाने में शायद आपने बॉर्डर्स देखे होंगे, मैं एक बार यहाँ पर बॉर्डर देखने गया था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, नजदीक में ही आबू से, तो बहुत ऊंची ऊंची तारे कांटों के, बहुत ऊंचे ऊंचे पिलर्स जैसे कांटे की तार थी लंबी, बाउंड्री कांटों के सरियों की बनी हुई थी, और सरियों के ऊपर एक सूक्ष्म एक बहुत महीन तार लोहे की डाली हुई थी। इतनी इतनी जगह में हमने कहा कौन घुस करके आएगा, इतना क्या प्रबंध है, इतनी सिक्योरिटी क्यों। तो बोले इनको भी कहीं कोई हिला डुला के आ सकता है, इसके लिए तार डाली हुई है, अगर कोई आता है पता चलता है, कहीं से वाइब्रेशन भी आता है उस पर करंट छोड़ देते हैं, नजदीक भी आ जाए दुश्मन तो दूर चला जाए। बाबा भी हम सबको कहता है जिस स्थान पर रहते हो शुद्ध वाइब्रेशन की ऊंची दीवारें बना करके रखो, और उसमें बहुत श्रेष्ठ भावनाओं की करंट छोड़ दो, इतनी करंट हो कोई भी अशुद्धता उस वायुमंडल में प्रवेश न कर सके। ऐसी तपस्या का वायुमंडल अगर हो, विचार करके आप देखना, योग की करंट है, योग की तार है, बहुत शुभ भावनाओं की दीवाल है। कोई भी आत्माएं, कोई भी भटकती हो या शुद्ध हो, आसुरी वृत्तियों वाली हो, आपके स्थान पर प्रवेश नहीं कर सकती। ये साधारण बात नहीं है जो बाबा हम सबको अपनी स्थिति के लिए इतनी प्रेरणाएं दे रहा है। कई बार सबसे बड़ा शत्रु आलस्य और दूसरा अलबेलापन चलता है। सब कौन बना है, कहाँ नहीं बिगन है, सब जगह है, कोई न कोई बात तो हर स्थान पर है। बाबा कहते ये भी भाषा की अलबेलापन है। हम सब बाबा के बच्चे बहुत अलर्ट होकर के अपने स्थानों को ऐसा निर्विघ्न स्थान बना दें, हमारी वृत्तियों में भी निर्विघ्न स्थिति रहे, व्यर्थ का भी विघ्न न हो, उसके लिए मन और बुद्धि को खूब बिजी करो सेवाओं में, चिंतन में, अच्छे चिंतन में, पढ़ाई में। इधर उधर की बातों की बजाय समय मिलता है, खूब अच्छे अच्छे बाबा ने साहित्य दिए हैं, पुस्तकें हैं, स्टडी करो, मन को बिजी कर दो। इधर उधर की बातों में न जाकर के ये देखा वो देखा, ऐसी बात की वैसे की, और साथ साथ तपस्या के लिए स्पेशल समय निश्चित। बहुत से स्थान ऐसे हैं, इस समय जब से बाबा का होमवर्क मिला है, इस बार बाबा ने बहुत सार रूप में होमवर्क दिए हैं। बच्चे बहुत नाजुक समय आने वाला है और उस नाजुक समय को पार करने के लिए आपको अशरीरी स्थिति के अभ्यास को बढ़ाना है। बार बार शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करो, अलग हो जाओ। योग की यथार्थ स्थिति देह और देही का अलग अनुभव हो, मन बुद्धि भी एकदम स्थिर और एकाग्र हो जाए, सब प्रकार की हलचल बंद हो जाए, ऐसी तपस्या का जो वाइब्रेशन है वही चारों तरफ सेवा करेगा, आत्माओं को शांति का अनुभव कराएगा, सुखद अनुभव कराएगा और अपनी स्थिति को, अपने वायु स्थान को एकदम निर्विघ्न बना देगा। तो हम सभी बाबा की मुरलियां सुनते हैं, बहुत बाबा हम बच्चों को अनेक नई नई प्रेरणाएं देता है। आज वरदान में भी बहुत अच्छे शब्द बाबा के सुने, श्रीमत पर जी हजूर करने वालों के सामने हजूर हाजिर हो जाता है। याद है कितना अच्छा वरदान है, लेकिन इस वरदान को कभी हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया है? यदि हम बाबा की श्रीमत पर जी हजूर बाबा आपने जो कहा उसी प्रमाण हम चलेंगे, तो बाबा जी हजूर कहने वाले बच्चों के सामने सेकंड में हाजिर होता है। जहां आवश्यकता है जब याद करेंगे सच्चे दिल से। वैसे तो बाबा कहता मैं बच्चों से अलग होता ही नहीं हूं, आप बच्चे अलग कर देते हो, मैं जुदा नहीं होता हूं आप कर देते हो, मैं तो बच्चों के सिवाय और कहीं रहता ही नहीं हूं। एक बार बाबा ने मुरली चलाई थी, बच्चे बाप कहां रहता है, तो किसी ने कहा ऊपर सूक्ष्म वतन में रहता है, सूक्ष्म वतन कहां है, तो बाबा बोले बच्चे जहां बच्चों के स्नेह का घेरा है उस स्नेह के घेरे में बाप रहता है, अलग नहीं रहता है। तो इतना बाबा से सच्चे दिल का स्नेह अगर है, हर पल हर परिस्थिति में हर बात में बाबा ही सामने आता है, कोई व्यक्ति वैभव, कोई वस्तु, कोई चीज दूसरी नहीं आती, तो बाबा मेरे स्नेह के घेरे में बंधा हुआ है। इसलिए बाबा को सदा कंबाइंड रख करके सदा साथ का अनुभव करते हुए कोई भी बात आ जाए, नथिंग न्यू, पार हो जाएगी। साथी कौन है, जब समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, हमको निश्चय है, तो फिर ये बातें क्यों आई और हमको उलझा दें, परेशान कर दें। साथी को हम यूज करें, अपने कमजोर संस्कारों को अगर हम बार बार याद करते हैं तो भी हम खुशी में नहीं रह सकते। अगर कमजोर संस्कार ही चिंतन में आते, मेरे अंदर ऐसा है, मेरे अंदर ये है, मेरा ऐसा संस्कार है, मैं क्या करूं, तो भी बाबा कहता तुम्हारी स्थिति अच्छी नहीं बनेगी। है ठीक है, जान गए ना, बाबा का साथ लो, उसके साथ कनेक्शन जोड़ो, बाबा की शक्तियों का प्रयोग करो, कमजोरी खत्म हो जाएगी। जब साथी सर्वशक्तिमान है कमजोरी रहेगी नहीं। लेकिन हम बाबा को कई बार यूज नहीं करते। अब बाबा चाहते हैं बच्चे जब मैं ऑफर दे रहा हूं तो मुझे यूज करो। तो बाबा को यूज करने की विधि क्या है? दिल का सौदा है बस, दिल का सौदा है, दिल से प्यार से बहुत अच्छे। श्रीमत जो कह रही है उस पर जी हजूर करते चलो, यही सौदा और कोई सौदा नहीं है। तो अमृत वेले से रात तक के लिए बाबा की मुरली ही श्रीमत है, और मुरली के अंदर रोज नए नए ढंग से श्रीमत दे रहा है। अच्छी तरह से इसकी स्टडी करके उस श्रीमत को पालन करते रहेंगे तो बाबा साथ निभाने के लिए बंध जाएगा। ओम शांति।